السلام علیکم خواتین ناظران. سورہ نور سے متعلق شاید سوال ریپیٹ ہوا ہے، علم میں اس کو واضح طور پہ ایکسپلین نہیں کر سکا ہوں گا. میں نے یہ عرض کیا تھا کہ اس کو دو طرح سے ہم لے سکتے ہیں، اس آیت کو، کہ اللہ کی نور کی مثال ایسی ہے جیسے ایک چراغ جو فانوس میں ہے، اس چراغ میں ایک ایسے پاک زیتون کے درخت کا تیل ہے جو نہ مشرقی ہے نہ مغربی، اور وہ تیل آپ ہی آپ بھڑک اٹھنے کو تیار ہے. یہ سوال ہے کہ ان چیزوں سے کیا مراد ہے. وہ چراغ، فانوس، زیتون کا مبارک درخت جو نہ مشرقی ہے نہ مغرب، اور جس کا تیل خود بھڑک اٹھ رہا ہے، اسے آگ نہ بھی چھوئے. میں نے اسے ایکسپلین کیا تھا کہ روحانیت میں اللہ کا اپنا جو نور ہے، اسی نور کا ایک حصہ، اس سے تخلیق ہوئے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم، پھر اسی نور کے آگے ایک حصے سے دوسری پاک روحیں تخلیق ہوئی ہیں، پھر ایک اور حصے سے عام روحیں تخلیق ہوئی ہیں. اللہ کا جو نور ہے وہ چراغ ہے جو جل رہا ہے اور اپنے نور کو پھیلا رہا ہے. اس میں سے نکلا ہوا ایک نور اگر کوئی کتاب میں ڈھونڈ سکے تو جہاں نور سے متعلق ذکر ہے، کہیں فقیر میں یا فقیر نگری میں، وہاں ایک ڈائیگرام بنائی ہوئی ہے. تو اس ڈائیگرام کو اگر دیکھیں، وہ ایک دائرہ ہے اندر، اس کے بعد باہر ایک اور دائرہ ہے، پھر باہر ایک اور دائرہ ہے، پھر باہر ایک اور دائرہ ہے. تو اس سے یہ مثال پوری طرح سمجھ آ جائے گی کہ جتنی اس میں دیا ہے کہ ایک چراغ ہے جو فانوس میں ہے، شیشے کا بنا ہوا، اور اس چراغ میں زیتون کا تیل ہے جو خود بخود بھڑک اٹھنے کو تیار ہے. تو وہ دائرے اگر آپ دیکھیں تو اس سے پوری صورت یہی بنے گی جو یہاں پہ. اس کو ہم اس طرح سے بھی کہہ سکتے ہیں کہ اللہ کا نور ہی سب کچھ ہے، اور کائنات اگر روشن ہے تو وہ صرف رب کے نور سے ہے. کوئی اور نور ایسا نہیں جس نے کائنات کو روشن کیا ہوا ہو. اور انسان کا دل جو ہے وہ شیشے کے فانوس کی طرح ہے جس کا ذکر سورہ نور میں ہے، اور اگر وہ شیشہ دھندلایا ہوا ہوگا تو اس سے روشنی پھیل نہیں سکے گی، بلکہ روشنی اسی میں قید رہ جائے گی. آپ نے جلتی ہوئی لالٹین دیکھی، اس میں شیشہ لگا ہوا ہوتا ہے. جس زمانے میں ابھی بجلی نہیں آئی تھی انڈو پاکستان میں، تو جیسے ہم کتابوں میں پڑھتے ہیں کہ ہر گلی محلے، سڑک کے کارنر پر لیمپ ہوتے تھے، اور روزانہ شام کو ایک آدمی سیڑھی اٹھائے ہوئے آ کے ان لیمپس کے شیشوں کو صاف کرتا تھا، تیل بھرتا تھا اور جلا کے چلا جاتا تھا. چراغ کے ارد گرد جو شیشہ ہے وہ جس قدر اجلا ہوگا، جس قدر صاف ہوگا، اس میں سے روشنی اسی طرح سے نکلتی ہے اور پھیلتی ہے. جب ہم اپنے دل کو آئینے کی طرح چمکا لیتے ہیں، صاف کر لیتے ہیں، تو پھر اس چراغ کی روشنی جب اس دل پر پڑتی ہے تو روشنی منعکس ہوتی ہے، پھیلتی ہے چاروں طرف. اگر اس دل میں کثافت ہے، کسی زمانے میں یہاں گفتگو ہوتے ہوئے ان کثافتوں کا ذکر ہوا تھا کہ امام غزالی رحمت اللہ علیہ صاحب کے مطابق دل کی 10 کثافتیں ہیں، جب تک وہ کثافتیں صاف نہ ہو جائیں رب اس دل میں آ کے رہتا نہیں ہے. کینہ، हसद, हिर्स, गुस्सा, लालच, ये सब वही कसापते हैं। जब तक हम अपने दिल को साफ न कर लें, रब उसमें नहीं रहता। तो दिल का आईना जब तक के हम साफ नहीं करते, दिल के शीशे को साफ नहीं करते, इस चिराग की रोशनी दबी रहेगी, वो मुनकस नहीं होगी वहां से। तो रूहानियत में ये जो फानूस का जिक्र है, उसको इंसानी दिल से तशबीह है। जैसे हम कहते हैं दिल में रब रहता है, तो ये चिराग जो नूर का है, उस दिल में जब तक कि वो साफ नहीं होगा, वो आके रोशनी फैला नहीं सकेगा, रोशनी दिल को मिलती नहीं है। तो इसकी एक तौजी वो भी है। और ये जो जैतून का मुबारक दरख्त का जिक्र है कि उसका तेल है जो भड़क उठने को तैयार है, जो न मशरकी है न मगरबी है, उससे मुराद इल्म और ईमान से है कि अगर कोई शख्स जरा सा ये इसकी समझ यूं हमें आ जाएगी कि रब ताला ने कहा कि जो मेरी तरफ एक कदम बढ़ता है तो मैं उसकी तरफ कई कदम बढ़ता हूं। जो शख्स नेकी की राह इख्तियार करता है, तो उसके दिल में सोए हुए ईमान की चंगारी एकदम भड़क उठती है। तो भड़क उठने से मुराद वो है कि वो भड़कने को तैयार है। तो जो ही इंसान जरा सी एफर्ट करता है, तो उसका ईमान एकदम से सर उठाता है दिल में, और वो पूरी कुव्वत से पनपने लगता है दिल में। क्योंकि ईमान के लिए ना कोई हद है ना कोई हिसाब है, इसलिए कहा गया कि ना वो मशरकी है ना वो मगरबी है, और भड़क उठने को तैयार है। सिर्फ ऐसा इंसान चाहिए जो ईमान की राह पर पहला कदम उठा ले, उसके बाद चल निकलते हैं मामलात। मेरा ख्याल है कि इस एक्सप्लेनेशन के बाद तो ये बात पूरी तरह वाजे हो गई होगी, और अगर अब भी समझ ना आए तो फिर मुझे दोबारा लिख दीजिए, मैं इसको फिर किसी और नए रंग से एक्सप्लेन करने की कोशिश करता हूं। और इसी जन में एक चीज मैं अर्ज कर दूं कि ये जो जैतून के तेल की मैं मिसाल दे रहा हूं, एक चीज हमें याद रखनी चाहिए कि अल्लाह पाक है, और ये भी सूरह नूर ही से है, अल्लाह पाक है, और रब के साथ ताल्लुक पाकीजगी का ही हो सकता है, कसावत का नहीं। तो अगर हमें अल्लाह के साथ ताल्लुक बनाना है, तो हमें अपने आप को पाक करना होगा। और वो पाकी जो है वो सिर्फ जिस्मानी तहारत की नहीं है, सिर्फ वजू की पाकी नहीं है, वो पाकी इंटेलेक्चुअल पाकी है, जहनी तौर पर हमें अपने आप को पाक करना होगा अगर रब के साथ ताल्लुक रखना है तो। और सूरह नूर के हवाले से चूंकि बात कर रहा हूं, तो वहीं से रेफरेंस में आपसे कोट कर दूं कि रब ताला ने सूरह नूर में पाकबाज लोगों पर तोहमत लगाने से मना किया है, और ऐसा शख्स जो पाकबाज बीवियों पर या लोगों पर इल्जाम लगा दे और उसको साबित न कर पाए कि वो दुरुस्त कह रहा है, तो उसकी सजा 80 कोड़े सूरह नूर में बताई गई है। इंटेलेक्चुअल बालिदगी असल चीज है कि हमारी सोच पाक हो, और जब हमारी सोच पाक होती है तो फिर हम किसी के बारे में बदगुमान नहीं होते, हम दूसरे की इज्जत को अपनी इज्जत से ज्यादा कीमती समझते हैं, फिर हम रब की उस सुन्नत पर अमल करते हैं कि वो सतारुल अयूब है, ऐबों को छुपा देता है लोगों के, तो हम उसी सुन्नत पर अमल करते हैं और दूसरों के ऐबों को छुपा लेते हैं। हम जुबान से कोई ऐसी बात नहीं निकालते जिससे किसी पर हरफ आ जाए, किसी की तौहीन हो जाए। किसी की नेकनामी पर धब्बा आ जाए, किसी की शोहरत को नुकसान पहुंचे, हम जुबान पर वो लफ्ज लाते ही नहीं। फिर ये ज़हनी पाकीज़गी है, हम फिर गुनाह की सोचते ही नहीं अगर हम ज़हनी तौर पर पाकीज़ा हो गए तो। और जब इंसान सोचता नहीं है तो उस राह पे निकलता भी नहीं है, क्योंकि हर काम की इब्तदा सोच से होती है। सोच है, उसके बाद नियत है, फिर इरादा है, और फिर अमल है। तो अगर वो बुनियादी चीज ही वहां ना रहे, हमें सोच ही ना आए, तो फिर बाकी तीनों चीजें वजूद में नहीं आएंगी। तो हमें ज़हनी तौर पर अपने आप को पाकीजा करना होगा, अपनी सोच को पाकीजा करना होगा, तो रब के साथ फिर ताल्लुक बनता है, क्योंकि रब पाक है और पाक सोच ही उससे ताल्लुक रख पाएगी, दूसरी सोच ताल्लुक नहीं रख पाती। किसी साहब ने सवाल कहा कि एक सवाल, एक शख्स जो कुर्बे इलाही का मुतलाशी हो, अल्लाह का कुर्ब पाने की तड़प रखता हो, लेकिन जिंदगी के हालात और नफ्स की कमजोरी इतनी कि नमाज के फराइज में भी कोताही हो जाती हो, और दिल में अल्लाह से अनदेखे सौदे करने तड़प और जज्बात रखता हो, बस बंदा अल्लाह का कुर्ब खैर व आफियत से पाना चाहता हो तो क्या करे? एक सवाल ये पैदा होता है कि इंसान किसी का कुर्ब क्यों चाहेगा? हम अगर किसी के करीब जाना चाहते हैं तो उसकी वजह क्या है? बुनियादी तौर पर तो ये सोचना होगा हमें। हम दो अगराज से किसी के करीब होना चाहेंगे। एक सूरत तो ये है जो बड़ी ही अदना दर्जे की चीज है कि कोई शख्स इक्तदार में है, पावरफुल है, इख्तियारात रखता है, हम उसका कुर्ब हासिल कर लें तो वो हमें फायदा दे देगा, उससे हम अपनी अगराज दुनियावी अगराज पूरी कर लेंगे। ये बहुत ही अदना दर्जे की गर्ज है और नापसंदीदा है। दूसरी सूरत यह हो सकती है कि वो शख्स अपनी आदात व अतवार से, अपने अखलाक की वजह से, अपने इल्म की वजह से हमें इतना अच्छा लगता हो कि हम उसे आइडियलाइज किए हुए हों, उससे प्यार करते हों, तो हम उसकी कुर्बत के ख्वाहिशमंद होंगे। तो मुख्तसर लफ्जों में यूं कहिए कि या तो दुनियावी गर्ज से किसी के करीब होना चाहते हैं हम, या प्यार के मारे उसके करीब होना चाहते हैं। तो अगर हमारे दिल में ये ख्वाहिश है कि हम रब के करीब चले जाएं, रब का कुर्ब हासिल कर लें, तो फिर यही एक बात हो सकती है कि हमें उससे प्यार है। अगर दुनियावी अगराज से उसके करीब होने की ख्वाहिश है तो दुनिया तो वैसे भी अता करता है, वो तो उनको भी अता करता है जो उसे मानते ही नहीं, वो उनको भी अता करता है जो उसके साथ शरीक ठहराते हैं, वो उन लोगों को भी अता करता है जो उसे मानते तो हैं लेकिन मेरी तरह नाफरमान हैं, सरकश हैं, फांसी को फाजर हैं, उनको भी लुक आफ्टर करता है वो, और वो नेक लोगों को भी लुक आफ्टर करता है। तो वो दुनियावी गर्ज तो फिर बेमायनी हो गई वहां। वो तो रब की शान रबूबियत ये है कि वो हर एक को पालता है, उसकी शान ही ये है, बिन मांगे अता करता है, ये उसकी शान रबूबियत है। तो उसके कुर्ब को हासिल करने की फिर एक ही वजह हो सकती है कि हमें उससे प्यार है। जिससे हमें प्यार है हम उसकी छोटी से छोटी ख्वाहिश को भी पूरी करते हैं, उसके छोटे से छोटे हुक्म को भी बजा लाते हैं। सिर्फ एक खौफ जहन पर रहता है कि जिससे मैं प्यार करता हूं मुझसे रूठ न जाए। तो यही एक अंदेशा कि वो मुझसे रूठ न जाए, उसकी छोटी सी छोटी बात उसकी छोटी सी छोटी ख्वाहिश को पूरी कराता है, और इस अंदाज में पूरी कराता है कि उसकी ख्वाहिश को पूरी करके इंसान को खुशी होती है। तो जब हम रब से इस दर्जे का प्यार करते हैं तो फिर तो हम उसके छोटे से छोटे हुक्म को, बड़े से बड़े हुक्म को भी इसलिए उसको कैरी आउट करेंगे कि हमें ये अंदेशा रहेगा कि वो हमसे रूठ न जाए। तो जब हम इस तरह से उसकी छोटी से छोटे हुक्म को बजा लाएंगे तो फिर ये सवाल ही नहीं पैदा होता कि हम नफ्स के गुलाम हो जाएं। फिर नफ्स से दुश्मनी चल निकलती है। जब अल्लाह से प्यार होता है तो इंसान नफ्स से दुश्मनी पालता है, हर वो काम करता है जो नफ्स की ख्वाहिश के खिलाफ हो, नफ्स की ख्वाहिशात को रद्द करता है। वो इर्द गिर्द का माहौल, इर्द गिर्द की हालात उसको अपनी तरफ रागिब नहीं कर पाते। लेकिन अगर इंसान इतना कमजोर है कि रब की मोहब्बत भी पाल रहा है और इर्द गिर्द के मामलात भी उसे अपनी तरफ रागिब कर लेते हैं, तो इसका आसान तरीन हल ये है कि कुरान पाक की तलावत कसरत से की जाए, और तलावत कलाम पाक का फिर एक तरीका ये इस्तेमाल किया जाए कि इतनी आवाज में तलावत की जाए कि जिसको इंसान खुद सुन सके और अपनी आवाज को बहुत गौर से सुने कि मैं क्या पढ़ रहा हूं। दो चार दिन, पांच दिन की प्रैक्टिस के बाद इंसान उसमें डूबने लगेगा। तो जब तलावत कलाम पाक करेगा तो उसका राबता अपने इर्द गिर्द के हालात से उतनी देर के लिए मुनकता हो जाएगा जब तक कि वो अपने आप को सुन रहा है कि मैं क्या तलावत कर रहा हूं। और तलावत कभी बहुत तेज रफ्तारी से मत कीजिए। हम लोग कम से कम वक्त में ज्यादा से ज्यादा कुरान पाक पढ़ने के लिए बहुत तेजी के साथ पढ़ते हैं कुरान को, वो गलत है। कुरान को तरतील से पढ़ना चाहिए हमेशा कि एक एक लफ्ज अलहदा समझ में आए, उसको गौर से हम सुने कि हम पढ़ क्या रहे हैं। तो जब हम इतने गौर से सुनेंगे तो दुनिया से उतनी देर के लिए हमारा ताल्लुक मुनकता हो जाएगा और हम डूबने लगेंगे कलाम इलाही में। यह हमारी बदनसीबी है कि हमें अगर कोई ये कह दे कि तुम कुरान पाक की तलावत किया करो तो जवाब सामने से हमेशा एक सुनने में आता है कि वो तो ठीक है जी, लेकिन कोई तस्बीह तो बताइए। हमेशा ये जवाब होता है कि वो ठीक है कुरान पाक, लेकिन आप तस्बीह बताइए। अजीब बात है कि मैं किसी साहब से 10 रुपए मांगूं और वो अपनी जेब से निकाल के अपना पूरा वॉलेट मुझे दे दे, और मैं उससे कहूंगा नहीं ये ठीक है, ये वॉलेट दे रहे हैं वो तो ठीक है, लेकिन आप 10 रुपए तो दीजिए मुझे। जब हम दूसरों से ये कहते हैं कि हमें पढ़ने को कुछ बताइए और वो कुरान पाक पूरा आपको रेफर करता है कि कुरान पाक पढ़िए, तो ये मत समझिए कि उसने आपको टाल दिया है। ये समझिए कि आपके 10 रुपए मांगने पर उसने अपना पूरा वॉलेट आपके हवाले कर दिया। ये वज़ाइफ और तस्बीहात का सिलसिला कुछ ऐसा चला है। वज़ाइफ की बात हुई तो मैं आपसे एक चीज अर्ज कर दूं, पहले भी एक दो बार मैंने अर्ज किया कि हम लोग वज़ाइफ और तस्बीहात ज्यादातर हम में से मासूम उन लोगों को जिन्हें अल्लाह ने तौफीक बख्शी है, वज़ाइफ और तस्बीहात इसलिए करते हैं कि हम पर कोई दुनियावी मुसीबत ना आने पाए, दुनियावी तौर पर हम सुखी रहें, हमारे काम आसानी से होते चले जाएं। ये बेअमली की राह है, मुसलमान की राह नहीं है ये। मुसलमान तो जद्दोजहद में यकीन रखता है और पूरी तरह मेहनत करने के बाद फिर अल्लाह के हजूर दुआ करता है कि या बारी ताला मेरे अंदर जितनी हिम्मत और सकत थी میں نے اپنی کسی کوشش کر لی، اب معاملہ تیرے سپرد کرتا ہوں، تو اس کا مجھے بہترین اجر عطا فرما دے، اور اللہ اس کی محنت سے کہیں بڑھ کر اسے انعام عطا کرتا ہے۔ ہم خود تو ان راہوں پر چلے ہیں، وجوہات اس کی کچھ بھی رہی ہوں، لیکن بدنصیبی یہ ہے کہ ہم ایسی جگہوں پر اپنے چھوٹے چھوٹے بچوں کو بھی لے جاتے ہیں اور بچوں سے کہتے ہیں کہ آپ دعا کے لیے کہیے کہ میں فرسٹ آ جاؤں، تو وہ معصوم بچے چھوٹی عمر سے ہی ان کے ذہن پر یہ بات جم جاتی ہے کہ کامیابی کے لیے محنت معنی نہیں رکھتی، بلکہ دعا کرا لی بس یہی کافی ہے، میں کامیاب ہو جاؤں گا۔ تو میں ہمیشہ ایک بات عرض کیا کرتا ہوں کہ خدا کے لیے چھوٹے بچوں کو ایسی جگہوں پر نہ لے جائیں، بلکہ ان سے آپ یہ کہیے کہ بیٹا جتنی محنت کرو گے اللہ اس سے بڑھ کر تمہیں اجر دے گا، محنت کرو اور خود اللہ سے دعا کرو کہ میں نے پوری محنت کر لی، اب اس کا بہترین اجر عطا فرما دے۔ تو سوچ ان کی مثبت رہے گی، صحیح ڈائریکشن میں رہے گی۔ میں بھی ایک کام کیا کرتا ہوں کہ میں خود نماز نہیں پڑھتا، قرآن پاک کبھی نہیں پڑھا میں نے، لیکن جہاں کوئی مجھے یہ سنگن مل جائے کہ یہ بندہ اللہ کے حضور دعا کرتا ہے، اللہ اس کی دعائیں قبول کر لیتا ہے، تو میں ایسے بزرگ کے در پہ ضرور جاتا ہوں اور سارا راستہ پلان بناتا جاتا ہوں کہ آج میں فلاں فلم دیکھوں گا، فلم دیکھنے کے بعد جا کے میکلو روڈ پر فلاں کے یہاں مرغ چنے کھاؤں گا، وہ یہ تمام پلان راستے بھر بناتا جاتا ہوں، وہاں جا کے درخواست کیا کرتا ہوں کہ جناب ذرا جلدی سے میرے لیے دعا کر دیجیے، کیونکہ فلم کا شو نکلا جا رہا ہے کہ میں نماز پڑھنے لگوں۔ اگر یہ کام دعاؤں سے ہونے تھے تو پھر ان کے کرنے پر اجر کیسا اور نہ کرنے پر سزا کیسی؟ رب تعالیٰ نے جگہ جگہ جو قرآن میں انسان کے لیے کہا کہ اپنے نفس سے لڑیے، رب کی طرف بلایا اس نے، تو پھر اس کا اگر یہ دعا ہی سے کرنا تھا تو مجھے اجر کاہے کا اور نہ کرنے پر مجھے سزا کاہے کی؟ جس نے دعا کی میں نیک ہو گیا، تو نیک ہونے کا اجر تو پھر اس کا ہے، میرا تو نہیں ہے۔ کسی نے دعا نہیں کی میں بد کا بد رہا، تو سزا دعا نہ کرنے والے کی میری کاہے کی ہے؟ بھائیو، یہ ہماری کوششوں سے منسلک ہے، یہ چیز اپنے نفس کو شکست دے کر نیکی کی راہ پکڑنے میں جو محنت اور جو تردد ہم نے کیا، جو تکلیف اٹھائی، انعامات تو اس کے ہیں۔ دنیا کی تمام تر لالچ کو ایک طرف چھوڑ دیا اور رب کی طرف ہم جو لپکے، تو اجر تو اس کا ہے۔ زندگی میں اگر وہ کامیابی چاہتے ہیں جو ہمارے اسلاف کو ملی تھی، دنیا میں عزت بھی ملی ہمیں، مال و دولت بھی ملی، اقتدار بھی ملا، تو وہ صرف ایک بات کا نتیجہ تھی کہ ہمارے اسلاف نے اپنے نفس کو شکست دی، اللہ کی بتائی ہوئی راہ پر چلے، اور انہوں نے محنت اور جدوجہد کی ہے، اس کے نتیجے میں رب تعالیٰ نے انہیں ہر طرح کی کامیابی عطا فرما دی۔ تو ہم اگر وہی راہ اپنا لیں، رب کو پکارتے رہیں رات کے اندھیرے میں، ہم رات کی تنہائی میں رب کو ہم پکارتے رہیں، اور دن میں ہم جان توڑ محنت کر لیں، پھر ویسی ہی کامیابیاں مل جائیں گی جیسے ہمارے اسلاف کو ملی تھی۔ دعا ضرور ہم کرائیں، لیکن آپ کبھی ذرا جا کے ایسے جہاں دعائیں کرتے ہیں لوگ جاتے ہیں کہ وہ فلاں آدمی مستجاب الدعوات ہے، اس کے پاس جا کے ہم دعا کراتے ہیں، تو ایسے ٹھکانے پہ بیٹھ جائیے خاموشی سے اور واچ کیجئے۔ بڑی اچھی خوبصورت سٹڈی ہے، بڑی انٹرسٹنگ سٹڈیز ہیں یہ۔ बड़ी हैरत होती है देखकर, और उनमें मैं भी शामिल हूं। मैंने भी आज तक किसी से ऐसी दुआओं के अलावा कोई दुआ ही नहीं कराई कि वहां दुआएं क्या हैं। सबका सब अपने फराइज से फरार में कामयाबी की दुआएं हैं। मैं भी दुआ कराने वालों के पास जाता हूं कि दुआ कर दीजिए मेरा बेटा नाफरमान हो रहा है, वो मेरा फरमाबरदार हो जाए। और मुझे कभी किसी दोस्त ने ये नहीं समझाया कि तुम्हारा बेटा तो रब का बंदा है, तो दुआ ये क्यों नहीं कराते कि अल्लाह का फरमाबरदार हो जाए, तुम अपने फरमाबरदार बनाने को क्यों तुले हुए हो। हालांकि उसको रब की फरमाबरदारी सिखाना मेरी ड्यूटी है, रब ने मेरे ऊपर वो फर्ज किया है कि अपने औलाद की तरबियत पर मैं वक्त सर्फ करूं। ये मेरा फर्ज है जिससे मैं फरार हासिल कर रहा हूं किसी मुस्तजाब दावत आदमी से दुआ करा के कि मेरा बच्चा फरमाबरदार हो जाए, और वो बनाता अपना ही फरमाबरदार हूं। रब के फरमाबरदारी की मुझे ख्वाहिश नहीं रही। जब मेरा बेटा पढ़ता था क्लास 2 में तो मैं बेचैन हो के मजारों पे जाता था, लोगों के पास जाता था कि जो मेरा बेटा पढ़ाई में दिल नहीं लगाता, आप दुआ कर दीजिए कि पढ़ाई में दिल लगाए और पढ़ने लगे। किसी आदमी ने मुझे पलट के ये नहीं कहा कि वो अकलमंद, वो क्लास 2 में है अभी, अभी तुम्हें क्या पता कि उसकी दिलचस्पी है भी कि नहीं है। हालांकि अगर मैं उसे पढ़ाकू बनाना चाहता हूं कि वो पढ़ाई में दिल लगाए, तो फिर मुझे टीवी ड्रामे छोड़कर उसके सामने किताबें लेके बैठना पड़ेगा। जब बच्चा ये देखेगा कि बाप मेरा हर वक्त ये किताबें ही पढ़ता रहता है तो उसमें खुद भी पढ़ने की आदत पैदा हो जाएगी। तो मैं वो भी फरार हासिल करता रहा हूं। मेरी ख्वाहिश बड़ी होती, मैं लोगों के पास जाके दुआ कराता हूं कि दुआ कीजिए मेरा बेटा नमाज पढ़ने लगे, लेकिन कभी मेरे जहन में ये सोच नहीं आई कि जिस दिन से मैंने होश संभाली है उस वक्त से आज तक मैंने एक नमाज नहीं पढ़ी, तो बेटा कैसे नमाज पढ़ेगा। अगर मुझे उसे नमाजी बनाना है तो मुझे उसके सामने तहज्जुद गुजार बन के दिखाना पड़ेगा, तब वो नमाज पढ़ेगा। तो ये जितनी दुआएं हम कराने जाते हैं ये सब की सब वो हैं जो अपने फराइज से फरार हासिल करने की हैं। अगर मेरा बेटा किसी मुल्क में गैर कानूनी तौर पे चला गया, धोखा दिया, वीजा लिया उसने एजुकेशन की बुनियाद पर के पढ़ने जाना है, वहां जाके नौकरी शुरू कर ली, अब मैं मुस्तजाबुद दावात जो लोग हैं उनकी जान खा रहा हूं कि मेरा बेटा वहां इल्लीगल है, दुआ करें कि उसने झूठे कागजात सबमिट किए हैं वो पास हो जाए, उसको वीजा मिल जाए। झूठ से अल्लाह मना कर रहा है, धोखा दही से अल्लाह मना करता है, और मैं जाके उस मुस्तजाबुद दावात आदमी से ये कह रहा हूं कि तुम दुआ करो कि रब मेरे बेटे को झूठ और फ्रॉड पर कामयाबी अता कर दे। मेरे बेटे ने चोरी कर ली, पकड़ा गया, मैं दुआ कराने जा रहा हूं कि दुआ कीजिए वो बाइज्जत तौर पर बरी हो जाए, जबकि रब ने उसकी सजा ये रखी कि हाथ काट दिया जाए। मेरे बेटे ने कत्ल कर दिया तो मैं फकीरों के पास जा जाके झूठ भी बोल रहा हूं कि जी वो तो बेगुनाह है। वो फकीर अगर साहिब कश्फ है, उसने देख लिया कि इसके बेटे ने कत्ल किया, तो कहता कि शायद आप, वो तो इज्जत रख रहा अपने पास आने वाले की, कि आपके बेटे ने शायद आपको सच नहीं बताया, वो कत्ल में मुलव्वस है। और जी वो ठीक है, बच्चा गलती हो गई, आप दुआ कर दें वो बाइज्जत बरी हो जाए। रब ने यह कहा कि खून का बदला खून है, और मैं उस आदमी से ये कह रहा हूं कि तुम रब को अपने कानून बदलने को कह दो कि वो कानून बदल दे कि खून के बदले में बाइज्जत बरी कर दे। ये दुस्त रवैये नहीं है। अगर कुर्ब इलाही हासिल करना है तो रवैये हमारे इससे बिल्कुल मुख्तलिफ हो जाने चाहिए, तो कामयाबी आएगी वो जो हमारे असलाफ को मिली थी, हम बेइज्जत हो जाएंगे। मैं माफी चाहता हूं आज आपसे बड़ी तल्ख बातें कर दी, ऐसी बातें आमतौर पर मैं करता नहीं, इसलिए कि मुझे ये डर रहता है कि आप लोग कहीं मुझे डांट ना पिला दें। अगर किसी साहब कोई
तो क्योंकि मैं अमीर आदमी बनना चाहता हूँ, मेरी बेगम एक पीर साहब के पास गई हैं, तो वो उन्होंने 5 तावीज दिए पीने के लिए, 4 तो मैंने पी लिए हैं, तो 5वां आज रात को पीऊंगा शाह साहब, तो क्या उसमें किस तरह, लेकिन मैं चाहे किस तरह भी हो, बाय हुक एंड क्रूक आई वांट टू गेट रिच, तो वो उसमें किस तरह असर आएगा? मेरी इंटेंशन ये है कि नंबर 2 तरीके से पैसा कमाया जाए, तो उसका असर, चलो मैं दुआ के लिए आपको नहीं कहूंगा, तावीज में असर डाल दें कोई, वो जो पीर साहब से कराया हुआ है, तो उसका किस तरह होगा? प्लीज
भाई, इस तावीज में क्या असर होगा क्या नहीं होगा मुझे नहीं मालूम, लेकिन आपका सवाल सुनने के बाद मेरे जहन में कुरानी आयत आ गई कि हर इंसान को वही कुछ मिलता है जिसके लिए वो कोशिश करता है। कुरान में कहीं ये नहीं लिखा कि इंसान को वही कुछ मिलता है जिसके लिए तावीज कराता है। और दूसरी चीज ये है कि ये ख्वाहिश आपकी अच्छी है कि अमीर हो जाया जाए, लेकिन हैरत की बात यह है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमेशा रब ताला से एक दुआ मांगी कि या अल्लाह मुझे मसाकीन में उठाना, क्यामत के रोज मसाकीन के साथ उठाना। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खुद भी इरशाद फरमाया कि अगर मैं चाहूं तो ये कोहे ओहद पूरे का पूरा सोने का हो जाए, और उसमें शक कोई नहीं है, आंख का एक इशारा कोहे ओहद को पूरे का पूरा सोने का बना देता। लेकिन आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तो रवैया ये रखा कि जो भी नजराने और हदिया वसूल हुए आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने महफिल से उठने से पहले पहले लोगों में तकसीम कर दिए और हाथ झाड़ के खाली हाथ घर तशरीफ ले गए। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तो गुर्बत और मसाकीन की सी जिंदगी को तरजीह दी है। तो हम जो उम्मती हैं आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के, मालूम नहीं हम इतने खौफजदा क्यों रहते हैं गुर्बत से। ये कभी इस पे हम गौर करें तो अजीबोगरीब सी सूरत हाल हमें सामने हमारे आती है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने किस जिंदगी को तरजीह दी और हम खौफजदा उसी जिंदगी से हैं जिसको तरजीह दी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने। और जितने औलिया अकराम गुजरे हैं उन्होंने भी उसी सुन्नत पे अमल किया है कि सब कुछ होते हुए भी गुर्बत की जिंदगी गुजार ली।
अस्सलाम वालेकुम सर।
वालेकुम अस्सलाम।
मोहतरम शाह साहब, दुआ के बारे में बात हो रही थी तो एक वाकया आपके साथ शेयर करना चाह रहा था।
जनाब
हजरत उमर रजी अल्लाह ताला अन्हो की आले खिताब से उनके ग्रेट ग्रैंडसन थे जो खाना काबा में बैठे इबादत फरमा रहे थे, तो उस वक्त के खलीफा जो कि बगदाद से तशरीफ लाए थे उमरे की घर से, तो उन्होंने पूछा कि ये बुजुर्ग बहुत इन्हमाक से इबादत फरमा रहे हैं, ये कौन है? तो लोगों ने बताया कि आप आले खिताब से हैं। तो वो करीब जाके बैठे और उनसे अपना तारफ करवाया, अमीरुल मोमिनीन हूँ, खलीफा वक्त हूँ, तो कुछ हुक्म करें मेरे लिए। तो उन्होंने फरमाया कि खाना खुदा में बैठ के किसी गैर अल्लाह से मांगना मुझे तो बहुत शर्म आती है। तो वो शर्मिंदा हुए और बाहर जाके उनका इंतजार करने लगे। तो जब बाहर पहुंचे तो कहने लगे कि हुजूर अब तो ये खाना खुदा नहीं है, कुछ हुक्म करें मेरे लिए, मैं आपकी क्या खिदमत करूं। तो उन्होंने अर्ज किया कि आप मेरे लिए क्या करना चाहते हैं, कोई दुनिया का मामला या कोई आखरत का? तो वो कहने लगे खलीफा साहब के आखरत तो मेरे इख्तियार में नहीं, कुछ दुनिया का ही फरमाएं। तो उन्होंने कहा कि दुनिया तो हमने कभी उससे नहीं मांगी जो दुनिया जहान का मालिक है, तो आखरत वैसे ही आप कह रहे हैं कि मैं उसमें कुछ कर नहीं सकता। तो दुआ के मामले में ये रवैये हमारे इस तरह के होने चाहिए या हमें खुल के अल्लाह से दुनिया और वगैरह मांगनी चाहिए और आखरत में? شکریہ.
نہیں, آپ رب تعالیٰ سے ہر چیز مانگیے. جس مقام کا آپ نے ذکر کیا وہ مقام توکل کی تیسری گھاٹی ہے, اور وہ ایسے مقام کی بات ہے جہاں انسان رب کا ہو جاتا ہے اور وہ رب سے صرف رب مانگتا ہے کہ یا اللہ تو مجھے اپنی ذات عطا فرما دے. یہ اور بات ہے کہ جس شخص کو رب مل گیا یہ کائنات ساری اس کو مل گئی, پھر دنیا ہو یا آخرت سب اسی کی ہے. کسی صاحب نے پوچھا ہے کہ اللہ کا نام یا کچھ اور آتھینٹک چیز مثلا درود پاک کے ورد کے حوالے سے چند حضرات کہتے ہیں کہ اس کے لیے اجازت لینے کی ضرورت ہے. اب درود شریف کے لیے قطعی طور پر ضرورت نہیں ہے کہ اس کی فضیلت خود آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمائی ہے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان سب سے بلند ہے, اور بلکہ درود شریف کے بارے میں تو رب تعالیٰ نے کہا, وہ خود بھی درود شریف پڑھتا ہے, اس کے فرشتے بھی درود بھیجتے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر. تو انسانوں کو بھی بھیجنا چاہیے, اس کے لیے اجازت کی قطعی طور پہ کوئی ضرورت نہیں. آپ بے دھڑک درود شریف پڑھیے. اللہ کا کوئی ایک نام پڑھنے کے بجائے زیادہ بہتر یہ ہوگا کہ ہم رب تعالیٰ کے 99 نام کثرت سے پائیں. بس اس کے اندر ایک چیز کا خیال رکھیے کہ دنیاوی اغراض کے لیے نہ پڑھیے, رب تعالیٰ کے ساتھ کوئی کمرشل ڈیل نہ کیجیے کہ میں یہ پڑھوں گا تو اس کے جواب میں مجھے فلاں چیز عطا کر دے, اور جب وہ چیز عطا ہو گئی تو پڑھنا بند. یہ کمرشل ڈیلز نہ ہم کریں رب تعالیٰ کے ساتھ, بلکہ رب تعالیٰ کو پکاریں, اس کو یاد کریں صرف اس لیے کہ وہ پکارے جانے کے لائق ہے, وہ اس لائق ہے کہ اس کا ہر وقت ذکر کیا جائے. اس میں اجازت کی ضرورت نہیں, وہ رب ہے, ہم اس کے بندے ہیں, وہ آقا ہے, ہم غلام ہیں اس کے. تو اپنے آقا کو یاد کرنے کے لیے کسی اجازت کی ضرورت ہے نہیں. انشاءاللہ تعالیٰ نیکسٹ سنڈے آپ سے ملاقات ہوتی ہے بشرط زندگی. السلام علیکم.